الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، آج 3 هفتوں کے وقفے کے بعد آپ حضرات کی خدمت میں حاضری کی توفیق ہوئی. پچھلے 3 ہفتوں میں مجھے کچھ بیماری پیش آئی، اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب رفتہ رفتہ روبہ صحت ہوں. بیماری چونکہ کچھ سینے سے تعلق رکھتی تھی، نمونیا کی بیماری تھی، تو اس میں تھوڑی سی بھی حرکت سے یا تھوڑے سے بات چیت کرنے سے سانس پھول جاتا تھا. تو اس لیے کوئی لمبی بات کرنے کا موقع بھی نہیں تھا، ہمت بھی نہیں تھی. ابھی بھی الحمدللہ طبیعت تو بڑی حد تک بحال ہوئی ہے، لیکن بات چیت کرنے میں، زیادہ لمبی بات کرنے میں اب بھی تھوڑا سا تکلف ہے اور سانس پھولنے لگتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کی دعاؤں سے یہ بھی دور ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آج بھی مجلس منعقد کرنے کے بارے میں کچھ تردد تھا کہ بول سکوں گا یا نہیں، لیکن یہ سوچا کہ الحمدللہ جتنی کچھ توانائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کا کرم ہے، تو جتنا موقع ہوگا آپ حضرات کی ملاقات ہی ہو جائے گی، آپ حضرات کی زیارت ہو جائے گی، اور جتنا موقع ہوگا، جتنی ہمت ہوگی، اتنی انشاءاللہ کچھ بات بھی کر لیں گے. مسلمانوں کا اپنی اصلاح کی غرض سے جمع ہو جانا بذات خود ایک نعمت. کوئی بات کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن جب مسلمان بھائی آپس میں ایک ہی مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر مل بیٹھ کر کی جائے. تو یہ بتاتے خود نعمت ہے. کوئی بات ہو یا نہ ہو، کوئی تقریر ہو یا نہ ہو، بیان ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کا اجتماع ہو جانا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جبکہ طلب کے ساتھ ہو اور اصلاح کی نیت سے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو. اور پتہ نہیں جب مسلمان جمع ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کس کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے، کس کی آمد قبول ہو جائے، اور اس کے صدقے میں باقی دوسروں کی بھی مغفرت ہو جائے. آدمی کے منہ پر لکھا ہوا نہیں ہوتا کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ ہے. دیکھنے میں معمولی سا آدمی معلوم ہوتا ہے، دیکھنے میں کوئی ولی اللہ نظر نہیں آتا، کوئی بڑی اللہ کا مقرب نظر نہیں آتا، لیکن نہ جانے اس کے دل کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے. और अल्लाह ताला के यहाँ उसका क्या मकाम है तो हमें पता नहीं चलता। पता नहीं किस अल्लाह के बंदे की खातिर अल्लाह ताला हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, उसके सदक़े में हमारा भी काम बन जाए। हदीस में रसूल करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब अशअसा अगबरा मदफूअ बिल अबवाब। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके बाल परेशान हैं, बाल बिखरे हुए, यानी देखने में कोई उनके अंदर हुस्न जमाल भी नहीं, कोई बज़ाहिर नज़्म भी नजर नहीं आ रहा, बाल बिखरे हुए, जिस्म गुबार आलूद, जिस्म पर मिट्टी की तहें जमी हुई, किसी मेहनत में मजदूरी में लगे हुए हैं, कोई काश्तकारी कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, तो उसके जिस्म पर गुबार, गर्द गुबार लगा हुआ है, बाल बिखरे हुए और जिस्म गुबार आलू, जिस्म पर गर्द, और मदफूअ बिल अबवाब। अगर किसी के दरवाजे पर जाएं तो लोग धक्के देके निकालते, ये कहां से आ गया, ये फकीर, ये मुफलिस, ये कहां से आ गया, तो अपने मेल का नजर नहीं आता, हालत इसकी बदाहे खराब है, बाल इसके बिखरे हुए हैं, जिस्म पर मिट्टी है, तो लोग निकाल दें, धक्के देकर निकाल दें कि जाओ यहां से। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के यहां वो इतना कीमती होता है कि अगर अल्लाह के ऊपर कोई कसम खा ले कि अल्लाह ताला जरूर ये काम करेंगे, कसम खाकर कह दे अल्लाह की, अल्लाह ताला उसकी कसम पूरी कर देता, अल्लाह ताला उसकी कसम पूरी कर देता। यानी अल्लाह तबारक व ताला के यहां उसका रुतबा, उसका मर्तबा, उसका मकाम बहुत ऊंचा मकाम होता है, वो अल्लाह ताला का मुकर्रम होता है। तो अब देखने में वो लग रहा है ऐसा ही मामूली आदमी, लेकिन अल्लाह जल्ला जलालहू के साथ उसके दिल की क्या कैफियत है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको किस मकाम पर पहुंचाया है, ये किसी को देखने में पता नहीं लगता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये अगर कसम खाएगा किसी बात पर मैं उस कसम को पूरा कर दूंगा। और हदीस में इसकी मिसाल भी आई है कि एक मर्तबा इस खातून ने दूसरे का दांत तोड़ दिया था, और कुरान करीम का हुक्म यह है कि असिन नुबिसिन, अगर कोई किसी का दांत तोड़े तो अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि उसके बदले में उसका दांत तोड़ा जाए, उसका दांत तोड़ा जाए। तो जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला आया तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम के मुताबिक कहा, भाई अल्लाह ताला की किताब का हुक्म है, क़िसास लेना होगा, बदला लेना होगा, जिसने दांत तोड़ा है उसका दांत तोड़ा जाए, उस औरत का दांत तोड़ा जाए। तो उनके गालिबन चचा थे हजरत अनस इब्ने नज़र रज़ी अल्लाह ताला, जब उनके सामने बात आई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोड़ा जाए तो उन्होंने कसम खा ली, या रसूलल्लाह मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इसका दांत नहीं तोड़ा जाए। तो ये कसम खा के बात कह दी। अब हुजूर के सामने मसला दरपेश है, किताबुल्लाह का हुक्म है, कुरान का हुक्म है कि दांत तोड़ा जाएगा, हुजूर ने फैसला फरमा दिया तोड़ा जाएगा, और वो कसम खा के कह गए ला वल्लाहि ला तुबसनु सनियतुहा, नहीं अल्लाह की कसम इनकी, इसका दांत नहीं तोड़ा जाएगा। जब वो कसम खाई तो जिसका दांत तोड़ा गया था उसने कहा कि जब इसने कसम खा ली है तो मैं माफ करती हूं इसको। उसने माफ कर दिया और शरीयत का हुक्म यह है जिसका जो हकदार है वो अगर माफ कर दे तो मामला खत्म हो जाता है। तो उस मौके पर भी अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इन्ना मिन इबादिल्लाहि लव अक्सम अलल्लाहि लअबर। अल्लाह के बाद बंदे ऐसे होते हैं जो अल्लाह के ऊपर कसम खा लेते हैं कि अल्लाह ये काम नहीं करेगा या करेगा, अल्लाह ताला उसको सच्चा कर। तो लोगों के जाहिरी हाल पर न जाओ, किसके दिल में क्या बैठा हुआ है, किसके दिल का क्या ताल्लुक है अल्लाह तबारक व ताला से, ये तुम्हें नहीं मालूम, ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है। तो इस वास्ते जब मुसलमानों का इज्तिमा होता है किसी भी किस्म का, जो कि इखलास के साथ तलब सादिक के साथ अल्लाह के रजा की खातिर जब मुसलमान जमा होते हैं, तो पता नहीं किस अल्लाह के बंदे के सदके में हमारा भी अल्लाह ताला बेड़ा पार कर दे। तो इसलिए मुतलक जमा हो जाना मुसलमानों का ये भी बड़ी एक अजीम नेमत है, बशर्ते के इखलास के साथ, तलब सादिक के साथ। तो अल्लाह तबारक व ताला नवाज देते हैं, और इसी वजह से फरमाया गया कि किसी को भी हकीर न समझो, किसी को भी हकीर न समझो, किसी को हकारत की निगाह से न देखो, जिसको देखो मोहब्बत की निगाह से देखो, हकारत की निगाह से नहीं। मैं गुनाहों की पिछले मर्तबा आखिरी मजलिस में आंखों के गुनाहों की बात कर रहा था कि आंखों की से जो गुनाह होते हैं उनसे बचने का अल्लाह ताला हम सबको एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने याद किया था कि अल्लाह तबारक व ताला की दी हुई नेमतों को अल्लाह तबारक व ताला के रिजा के मुताबिक इस्तेमाल करना ताकत है, और अल्लाह ताला की नेमतों को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करना, गुनाह के काम में इस्तेमाल करना, ये गुनाह है, ये मासियत है, नाफरमानी है। सारा दीन का हासिल ये है कि इंसान अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों को उसकी ताकत में इस्तेमाल करे, उसके रजा के कामों में इस्तेमाल करे, गलत इस्तेमाल ना करे। तो मैंने आज किया था कि आंखों के गुनाह में आजकल हम लोग बहुत मुब्तला रहते हैं, अल्लाह बचाए। बाहर निकलो तो आंखों को पनाह नहीं मिलती, और तो घर घर लोगों के पास ऐसे हालात आ गए हैं कि आंखों का गुनाह घर घर फैल गया है। तो वो गुनाह तो है ही, एक आंख का गुनाह ये भी है कि किसी को हकारत की निगाह से देखना, किसी को हकारत की निगाह से देखना, ये भी आंख का एक बहुत बड़ा गुनाह है। हकारत की निगाह से कब देखता है इंसान? जब अपने आप को बड़ा समझता है, अपने आप को समझता है कि मैं दौलतमंद हूं, मैं कवि हूं, मजबूत हूं, मैं नेक हूं, मैं नमाज पढ़ता हूं, दूसरा नमाज नहीं पढ़ता, तो उसको हकारत की निगाह से देखता। यह हकारत की निगाह से देखना, चाहे वो किसी की गुर्बत की वजह से हो, किसी के इफलास की वजह से हो, किसी के मामूली होने की वजह से हो, या उसके गुनाहगार होने की वजह से हो, हकारत की निगाह से देखने की कोई इजाजत नहीं। ये आंख का गलत इस्तेमाल है। हकारत और तहकीर गुनाह की है, गुनाह को हकीर समझना चाहिए और गुनाह की तकीर भी करनी चाहिए। लेकिन जो शख्स गुनाह में मुबतला है उसको हकारत से न देखो, उसको रहम की निगाह से देखो, तरस खाने की निगाह से देखो। जैसे एक शख्स बीमार हो, बीमार पड़ा है बेचारा, हल नहीं सकता, चल नहीं सकता, अस्पताल में पड़ा हुआ है, आलात लगे हुए हैं, बीमार है, तो क्या बताओ कि तुम उसको हकारत से देखोगे कि कितना हकीर है, कितना बीमार हो गया, बल्कि क्या करोगे, तरस खाओगे, रहम खाओगे कि ये बेचारा बीमारी में मुबतला है, दिल में तरस के जज्बात पैदा होंगे। तो हजरत, अगर किसी शख्स को आप गुनाह में मुबतला देखते हो, एक शख्स बेनमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये ना उसको हकारत की निगाह से ना देखो, उसको तरस खाने की निगाह से देखो कि बेचारा इतने बड़े फरीजे से गाफिल है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो, जैसे बीमार की दुआ की जाती है, बीमार के लिए दुआ की जाती है, बीमार का कुछ इलाज, अगर इलाज बस में हो तो इलाज कर लो, कुछ समझाना चाहो उसको मोहब्बत से समझा दो और उसको बात पहुंचा दो, तबलीग कर दो, दावत दे दो और दुआ भी कर। जैसे बीमार को देखकर दुआ की जाती है कि या अल्लाह इसको तंदुरुस्त कर दे, या अल्लाह इसको सेहत दे दे, इसी तरीके से उस शख्स के हक में भी दुआ करो कि या अल्लाह इसको अपनी रहमत से, इस गुनाह से निकाल दे, नाफरमानी की जिंदगी से निकाल दे, उसको हिदायत अता फरमा, ये दुआ करो। हकारत की निगाह से देखने की तुम्हारे अंदर को, तुम्हें क्या पता कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ उसका क्या ताल्लुक है, देखने में पता नहीं चलता, लेकिन क्या पता किसी वक्त उसकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आ जाए कि तुमको मीलों पीछे छोड़ जाए। इस वास्ते हकारत से किसी को ना देखो, किसी को हकारत से देखना ये क्या है, ये गुनाह है, ये आंख का गुनाह है। हां, अपने आप को देखो, अपने अंदर जो आयब है उनको देखो, अपने अयूब पर निगाह करो और उनकी इस्लाह की फिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाना है, मैं इन अयूब के साथ जाऊंगा, इन गुनाहों के साथ जाऊंगा, तो अपने अयूब को देखो। जब अपने अयूब पर नजर पड़ेगी तो दूसरों के अयूब छुप जाएंगे, फिर जो अपने अयूब से बेखबर रहे और तो औरों के देखते ऐब होना पड़ी अपनी बुराई पर जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा न रहा। उसी वक्त तक दूसरों के अयूब नजर आते हैं जब तक के आदमी अपने अयूब से गाफिल होता है। कैसे देखो, चलो ठीक है, कहो भी मैं नमाज पढ़ता हूं, ये नमाज नहीं पढ़ता, ठीक है, तो उस पर आप खुश हो, मगन हो, अपने आप को उससे बड़ा समझ रहे हो, लेकिन जरा ये तो देखो नमाज कैसी पढ़ रहे हो, जैसी पढ़नी चाहिए वैसी पढ़ रहे हो, जैसा खुशू होना चाहिए वैसा खुशू है। तो अगर अपने अयूब पर निगाह जाएगी तो फिर दूसरे के अयूब से निगाह हट जाएगी और उसकी ताकीर से इंसान परहेज करेगा। तो अपनी फिक्र करो, अपने हालात को देखो। अलैकुम अनफुसकुम, कुरान करीम कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो अपनी खबर लो, अपने अयूब को देखो। तो जब वो देखोगे तो फिर दूसरों की तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं होगी। एक आदमी खुद किसी बीमारी में मुबतला है, शदीद संगीन बीमारी में मुबतला है, वो अपने पेट में उसके दर्द हो रहा है, तो अपने दर्द को देखेगा या दूसरों के नजला जुकाम को देखेगा कि इसको नजला हो रहा है, इसको जुकाम हो रहा है, वो तो अपने उसको पड़ी होगी, तो अपने आप को देखो, अपनी फिक्र करो, अपने अयूब पर निगाह करो, मैं किस तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं अल्लाह ताला के हुकूक सही अदा कर रहा हूँ या नहीं, बंदों के हुकूक सही अदा कर रहा हूँ या नहीं, मैं किस हालत में हूँ, अल्लाह ताला के पास जाऊंगा तो अपनी जिंदगी के कामों का क्या जवाब दूंगा, ये फिक्र पैदा करो। जब ये फिक्र पैदा हो जाती है तो फिर इंसान को सारे किसी के ऊपर हकारत की निगाह डालने की जरूरत नहीं होती। नबी करीम सर्वरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाहुम अजअलनी फी आईनी सगीरा वफी आयुन नास कबीरा, अल्लाह मुझे अपनी आंख में तो, अपनी नजर में तो मुझे छोटा बना दिखा दीजिए, बना दीजिए, और दूसरे लोगों की निगाह में बड़ा बना दीजिए। क्या मतलब कि मैं तो अपने आप को अपने गुनाहों की वजह से, अपने अयूब की वजह से छोटा समझूं, मैं छोटा हूं, और जब बंदा तवाज़ो हकीकी इख्तियार करता है, अपने आप को वाकई छोटा समझता है, तो फिर लोगों के निगाह में अल्लाह ताला उसको बड़ा बना ही देते हैं। वो अगर हकीकी तवाज़ो, यानी कि मस्नूई बनावटी तवाज़ो करे आदमी, मस्नूई बनावटी तवाज़ो ये होती है कि अपने आप को कहे कि मैं तो बड़ा नाचीज हूं, बड़ा नाकारा हूं, बड़ा गुनहगार हूं, और वो कह इसलिए रहा है कि ताकि दूसरा जवाब में ये कहे कि नहीं हजरत, आप तो बड़े परहेजगार हैं, बड़े अकलमंद हैं, बड़े काबिल तारीफ हैं। और इम्तिहान इसका यह है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई मैं नाकारा हूं और गुनहगार हूं और नाचीज हूं, मेरी कोई हकीकत नहीं है, दूसरा कह दे बेशक आप ऐसे ही हैं, तो क्या होगा? अगर वो बेशक कह दे और उससे आपको खुशी हासिल हो कि हाँ भाई ठीक कह रहा है, ये मेरी हकीकत जानकर कह रहा है, तो इसके माने ये कि आप सच कह रहे थे। लेकिन अगर दूसरे के बेशक कहने पर आपको तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाए और अफसोस हो गया यार मैंने जुमला बोला ही क्यों था, तो इसका मतलब ये कि ये मस्नूई तवाज़ो है, ये झूठी तवाज़ो है, हकीकत तवाज़ो नहीं। इसलिए कि वो दरहकीकत तकब्बुर की वजह से कह रहा है, वो हकीकत में तवाज़ो नहीं है, वो तकब्बुर की वजह से कह रहा है कि ये दूसरा जवाब में मुझे तारीफ करे। तो रसूल करीम फरमाते हैं जालनी फी आईनी सगीरा, मुझे अपने आंख में, अपनी नजर में मुझे छोटा बना दे, अपनी नजर में मुझे छोटा बना दे। जब अपनी नजर में छोटा बन जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व ताला उसके ऊपर मारिफत के दरवाजे खोलते हैं, मारिफत के दरवाजे खोलते हैं, वो हकीकत उसको अपनी नजर आती है, अपनी हकीकत समझता है। और अगर अपने आप पर आंख डालता है, अपने आप को देखता है और बड़ा समझता है कि मैं तो बड़ा आलिम हूं, मैं तो बड़ा मुत्तकी हूं, परहेजगार हूं, या मैं मसलन मुझे बड़ा साहिब मनसब हूं, कोई ओहदा मुझे मिला हुआ है, लोगों में शोहरत हो गई है, लोगों में मेरी इज्जत की जाती है, इन बातों की तरफ अगर आदमी ध्यान करेगा और उससे लज्जत लेगा तो इसका मतलब यह कि वो उज्ब और खुदपसंदी की बीमारी में मुब्तला है, तकब्बुर में मुब्तला है, तकब्बुर में मुब्तला है। और तकब्बुर ऐसी बीमारी अल्लाह बचाए कि जो उम्मुल अमराज है, बीमारियों की जड़ है, बीमारियों की मां है, तकब्बुर अगर पैदा हो जाए तो वो तकब्बुर करता है, अपने आप को बड़ा समझता है, लोगों के ऊपर अपनी बड़ाई जिताता है, और उसके नतीजे में क्या होता है कि वो तो अपने आप को बड़ा समझ रहा है, लोग उसको छोटा समझते हैं, लोग उसको छोटा समझते हैं। किसी ने बड़ी अच्छी मिसाल दी है
کہ متکبر کی مثال ایسی ہے, جو تکبر کرنے والا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور نیچے آبادی ہو لوگوں,
تو اوپر پہاڑ کی چوٹی سے جب لوگوں کو دیکھے گا تو اتنے اچھے نظر آ رہے ہوں گے,
چھوٹے 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 کیڑے مکوڑوں کی طرح اتنی اونچی جگہ پر کھڑا ہوا ہے, تو وہ تو لوگوں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے اور لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا اس پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے, تو نیچے سے جب دیکھیں گے تو وہ
چھوٹا سا نظر آئے گا. تو متکبر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو, لوگ اسے وہ لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگ اسے چھوٹا سمجھتے ہیں, اور جو بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہو, اپنے عیوب پر اس کی نگاہ ہو, اپنی برائیوں پر نگاہ ہو, اس کی اصلاح کی فکر ہو, اس کی فکر میں پڑا ہوا ہو کہ یا اللہ میرے یہ عیب دور ہو جائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اس کو ایک طرف تو معرفت عطا فرماتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگوں کی نگاہ میں وہی بڑا ہوتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند رتبہ عطا فرماتے ہیں. لیکن بلند رتبہ حاصل کرنے کے لیے تواضع نہیں, یعنی یہ سوچ کے تواضع کرے کہ میرا بلند رتبہ ہو جائے, نہیں, حقیقی تواضع وہ ہے کہ جس میں آدمی واقعتاً اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر محسوس کرتا ہو اور محسوس کرنے کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی میں تو ہوں ہی نہیں, میری کیا حیثیت ہے, یہ سب مسلمان ہیں, اللہ کے بندے ہیں, یہ کوئی پتہ نہیں کس مقام پر پہنچا ہوا ہے, کوئی کس مقام پر پہنچا ہوا ہے, میں تو اپنے اس میں گھرا ہوا ہوں اپنے آپ کو. تو تواضع حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع وہ ہے کہ جس میں آدمی کو اپنے تواضع کا بھی احساس نہ ہو
کہ میں تواضع کر رہا ہوں, اگر احساس ہو گیا کہ میں تواضع کر رہا ہوں تو پھر وہی خود پسندی ہو جائے گی کہ میں تو بہت متواضع ہوں, وہ گڑبڑ ہو جائے گی. تو
کہتے ہیں حضرت ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو,
تو پکی اور سچی نیند وہ ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں سو رہا ہوں, جب سو رہا ہوتا ہے تو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں سو رہا ہوں لیکن سو رہا ہوں. تو اسی طرح تواضع وہ ہے کہ جس میں آدمی کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ میں تواضع کر رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں, اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. جب یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب میں اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما, یہ تواضع ہم سب میں اللہ تعالیٰ پیدا فرما. اللہ اکبر, حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات مجھے ہمارے ایک بزرگ نے سنائی اور ان کو حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنائی کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں سے تھے, خیر المدارس ملتان کے بانی, تو وہ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, وہ بھی حضرت کے خلیفہ تھے, ان سے جا کر کہا کہ جب میں حضرت کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے کہ جیسے کسی انسانوں کی مجلس میں بیل بیٹھا ہوا, اپنے آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ میں بیل ہوں باقی سب انسان ہیں.
تو پتہ نہیں کیا حالت ہے, مجھے اچھی ہے بری ہے, حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی, تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ حالت تو میری بھی ہے, میں بھی جب بیٹھتا ہوں تو سب اپنے سے مجھے افضل نظر آتے ہیں اور اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی جانور بیٹھا ہوا ہے انسانوں کی مجلس میں. تو حضرت نے فرمایا کہ چلو بھائی اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں, ان سے یہ حال ذکر کرتے ہیں حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ. تو وہاں پہنچے تو حضرت سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہمیں یہ صورتحال معلوم ہوتی ہے بڑی کہ سب تو انسان ہیں, ہم جا کے جانور بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں اس مجلس کے لائق ہیں کہ نہیں ہیں, یہاں پر بیٹھنا چاہیے ہمیں کہ نہیں بیٹھنا چاہیے. तो हजरत ने जवाब में फरमाया, मैं आपसे और मुझे जहां तक याद है अल्फाज वो ये थे कि देखो मैं रोजे से हूं, मस्जिद में बैठा हूं, मैं तुमसे ये कहता हूं कि मेरा भी मजलिस में यही हाल होता है। शेख अपने मुरीदीन की मजलिस में कहते हैं मेरा भी यही हाल होता है कि मैं अपने आप को सबसे कमतर समझता हूं, हर एक को अपने से अफजल, हर एक मुझे अपने से अफजल नजर आता है। तो अब बताओ, एक हकीमुल उम्मत मुजद्दिदे मिल्लत शेखुल मशायख अपने मुरीदों की मजलिस में यह कह रहा है और कह रोजे से हूं मस्जिद में बैठा हूं और कहता हूं, तो अल्लाह तबारक व तआला जब ये तवाज़ो अता फरमा देते हैं तो फिर दरवाजे खुलते हैं। जब आदमी को एहसास हो गया कि मैं बीमार हूं तो फिर बीमारी की दवा भी करता है, उसका इलाज भी करता है, उसकी फिक्र में भी पड़ा रहता है। तो ये तवाज़ो, इसलिए फरमाया अल्लाहुम्मा जालनी फी आईनी सगीर, मुझे अपने आंख में मुझे सगीर बना दीजिए, छोटा बना दीजिए। वफी आयुन नास कबीरा, और हां चूंकि ये क्यों कहा कि दूसरों के निगाह में मैं बड़ा बड़ा बना दीजिए, इसलिए फरमाया कि जब दूसरों के साथ मामलात पेश आते हैं तो फिर ये जरूरी है कि दूसरा भी कुछ कहीं, अगर ये समझे कि ये तो बिल्कुल ही जानवर है तो वो इसके ऊपर जुल्म व सितम तोड़ने लगे, उसकी हक तलफियां करने लगे, उसको गाली गलौज करने लगे, उसको मारने लगे। तो दूसरों के निगाह में बड़ा होने की वजह यह है कि ताकि उनके शर से महफूज रहूं, अलबत्ता मैं अपनी निगाह में छोटा। तो किसी पर भी हकारत की नजर डालना, चाहे वो किसी भी वजह से हो, गुर्बत की वजह से हो, इफलास की वजह से हो, मर्तबे की कमी की वजह से हो, या किसी के दीन से दूर होने की वजह से, हकारत की निगाह नहीं, हां काहे की निगाह, मोहब्बत की निगाह। जैसे बीमार के साथ मोहब्बत होती है, जैसे बीमार पर तरस खाया जाता है, उस तरह निगाह। मेरे खुसर साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी। अगर किसी साहब का कोई जिक्र आया तो कि वो मसलन किसी दीन से दूर हैं, कुछ हैं, तो बहुत ही तरस के अंदाज में फरमाया करते थे कि वो बेचारे बेचारे नमाज में तो नहीं आते, बेचारे का लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि बेचारे नमाज में तो नहीं आते, लेकिन वो फला बात होती है, लेकिन तो बेचारे का लफ्ज इस्तेमाल करते थे कि बेचारे यानी तरस खाने का लफ्ज। तो कभी भी किसी के ऊपर हकारत की निगाह ना डालो, ताकीर की निगाह से किसी को ना देखो, ये भी आंख का एक गुनाह है किसी के ऊपर। और अपने ऊपर कभी बड़ाई की निगाह ना डालो कि मैं बड़ा हूं। तो इस वास्ते हमारे हजरत वालिद साहब कद्दस अल्लाह ताला सिर्रहु, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, दारुलूम देवबंद की असातिज़ा की बात किया करते थे कि हमने अपने असातिज़ा इकराम को इस तरह देखा कि हर एक अपने आप को दूसरे से छोटा समझता था, हर एक उस्ताद दूसरे से छोटा समझता था, चाहे बड़ा शेखुल हदीस ही क्यों ना हो लेकिन अपने आप को छोटा समझता था दूसरे उस्ताद के मुकाबले। हर एक छोटा समझता था, तो फरमाया करते थे कि हर एक अपने आप को छोटा समझता था, नतीजतन सब बड़े थे। और आज हर एक आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, नतीजतन सब छोटे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये तवाज़ो अदा हुआ। तो आंख की गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह क्या है, अपने आप को बड़ा समझना और दूसरे को किसी को कमतर समझकर उसके ऊपर हकारत की निगाह डालना, इससे बचो, जिसको भी देखो मोहब्बत की निगाह से देखो। काफिर है तो काफिर के कुफर पर भी तरस खाओ कि बेचारा जहन्नम में चला जाएगा, इसको किसी तरीके से मैं राह रास्त पर ले आऊं। कोई बददीन है उसकी बददीनी के ऊपर तरस खाओ। रसूल करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे किसी शख्स ने आग जलाई तो आग जलने की वजह से परवाने उस आग के अंदर आकर गिर रहे हो, मैं कौलिया भर भर कर उनको आग से निकाल रहा हूं, उनको कौलिया भर भर कर आग से निकाल रहा हूं। तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बनाकर भेजा सारे आलमीन के लिए, तो आपकी काफिरों पर भी यही वजह है कि काफिरों के ऊपर भी आपने उनके हक में दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा फिर लिकौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह माफ कर दे इनको, ये बेचारे नादान हैं, इनके समझ में बात नहीं आती। तो खुलासा ये कि भाई हम लोग अपने निगाहों की हिफाजत के लिए सबसे पहले अपनी फिक्र करें, अपने ऊपर निगाह डालें, अपने अयूब की तरफ और उनकी इसलाह की फिक्र में लगें, दूसरों को अपने से अच्छा अफजल समझें। पता नहीं देखने में कैसा भी नजर आ रहा हो लेकिन पता नहीं अल्लाह तबारक व ताला के यहां इसका क्या दर्जा है, या फिलहाल या फिल माल, यानी बात हो सकता है इस वक्त उसकी हालत कुछ और हो और कुछ दिन के बाद अल्लाह ताला उसके हालात पलट दे और वो अल्लाह ताला का मुकर्रब तरीन बंदा बन जाए। लिहाजा किसी पर निगाह हकारत की न डाले, निगाह के इस गुनाह से अपने आप को बचाए। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल व करम से मुझे भी आपको भी इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए और मुझे अपने अयूब के ऊपर निगाह डालने की और अपने अयूब को समझने की तौफीक अता फरमाए, उसकी इस्लाह की तौफीक। ये बात पैदा हो गई तो इंशाल्लाह दरवाजा खुल गया, अल्लाह ताला के पास पहुंचने का दरवाजा खुल गया। अल्लाह ताला हम सबकी तौफीक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ علانیہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے معصیتوں سے گناہوں سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا